ॐ शांति ॐ शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। कहा जाता है नर चाहत कुछ और एक ही और भाई। मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता है, ये करे वो करे, ये हो वो हो, लेकिन भगवान तो कुछ और ही चाहता है। मनुष्य के प्लान अपने पर भगवान के प्लान अपने, तो होगा तो वही जो भगवान का प्लान होगा ना, मनुष्य का प्लान कहाँ चलेगा। तो मनुष्य का प्लान क्या है? परिवार नियोजन हो, बच्चे कम पैदा हो, और उसके लिए कई कृत्रिम आर्टिफिशियल उपाय अपनाते हैं। तो भगवान कहते इससे कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि जो मनुष्य आत्माएं परम धाम में है उनको तो आना ही है, वो तो आएंगे जरूर। तो कितना भी वो परिवार नियोजन करे, आर्टिफिशियल तरीकों से वो बच्चे कम पैदा हो, बच्चे पैदा न हो, उसके लिए उपाय करे, लेकिन आत्माओं को आना ही है। तो इसीलिए उनके सारे प्लान सब फेल हो जाएंगे। और सचमुच ऐसा ही हो रहा है ना। कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है भारत में, तो बहुत बढ़ती जा रही है। उस दिन हम पढ़ रहे थे कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या है वो यहाँ एक साल में बढ़ जाती है। भारत में कम से कम 1-2 करोड़ तो एक हर साल बढ़ते ही। इसीलिए पहले कहा 140, अभी तो 145, 100 पता नहीं कहाँ तक बढ़ेगी। तो इसीलिए मनुष्य तो कुछ और सोचते हैं, तो भगवान क्या सोचते हैं वो भगवान बताते हैं, मुरली में बताते हैं। तो कैसे फैमिली प्लानिंग करते हैं, कहाँ 140, 150 करोड़ भारत की जनसंख्या वो कम हो करके केवल 9-10 लाख हो जाएगी, तो कैसे होगी, वो भी भगवान का प्लान है। तो आज की मुरली है इसी पर। और बाबा, बाप, टीचर, सदगुरु की बात हर मुरली में कुछ न कुछ नए ढंग से सुनाते हैं। अव्यक्त मुरली में भी आता है, साकार मुरलियों में भी आता है। तो आज भी बाबा ने, शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है, लेकिन एक दूसरे ढंग से बाबा ने ये समझाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 17 फरवरी 2026 है। मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो। भगवान हमको हमारी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो। हमारी जिम्मेदारी अमर लोक स्थापन करना, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तो ऐसी दुनिया की स्थापना के हम निमित्त हैं, जहां कोई दुख व पाप नहीं होगा, सब निर्विकारी होंगे। हाँ, वो अमर लोक की स्थापना के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? अब हमारी है गॉडली फैमिली, वो गॉडली फैमिली नहीं है दुनिया में, वो तो लौकिक फैमिली है, लौकिक परिवार है। तो ये गॉडली फैमिली है, अब इसका वंडरफुल प्लान क्या है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। हमारी भी फैमिली प्लानिंग है। देखो, बाबा के बच्चे बनते हैं तो तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इससे भी तो जनसंख्या थोड़ी तो कम होगी जरूर। तो ये हमारी फैमिली प्लानिंग है। और दुनिया की फैमिली प्लानिंग कैसी है? तो गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। ये भगवान की फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना कर, वो भी सत धर्म की स्थापना कर, अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल न सके, उनके प्लान नहीं चलेंगे। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। क्या है भगवान की फैमिली प्लानिंग? मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। कौन सी आत्माएं रहेगी? जो फिर देवताओं को जन्म देगी योग बल से। ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है, एक संस्था भी है और एक परिवार भी है और एक यूनिवर्सिटी भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वो है शिव बाबा। आत्माएं है शालिग्राम जिनका ये शरीर है, हर एक को अपना अपना शरीर है, हर शालिग्राम को। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। दुनिया में तो कहते ना हमारी आत्मा, परंतु वास्तव में शरीर थोड़ी कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा शिव है, वो है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है कि हमारा सुप्रीम वो बाप भी है, टीचर सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में तो बुलाते हैं ओ गॉड फादर, मरने समय भी कहते हैं हे भगवान हे ईश्वर, पुकारते हैं ना। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है, किसको पुकार रहे हो? ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान हे ईश्वर। बाबा कहते यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब फिर आत्माओं का हो गया, शरीर का फादर को तो नहीं पुकारेंगे ना अंत के समय। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है एक तो पिता कहेंगे, दूसरा फिर कहते हैं हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। हे पतित पावन माना पतितों को पावन करने वाला, माना गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो वो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ, फिर और क्या हुआ? टीचर क्या करता है? फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में तो बाप अलग टीचर अलग गुरु अलग होते हैं, अब ये है बेहद का बाप टीचर और गुरु जो एक ही है। कितना फर्क हो गया, फर्क हो गया ना, वो बाप अलग टीचर अलग गुरु अलग और समय भी अलग। बच्चा पैदा होता है तो पहले तो बाप मिलेगा, टीचर तो बाद में मिलेगा, फिर बुढ़ापे में फिर गुरु करते तो गुरु तो बहुत बाद में मिलता है, या एक ही साथ बाप टीचर सतगुरु है। तो कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वो फिर हद का वर्षा देते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु अपने रूप से हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी तो हद की ही है ना, जो भी पढ़ाते हैं वो सतयुग के आदि से की तो पढ़ाई नहीं है, हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं, ये किसको भी पता नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानते हैं तो क्या नहीं जानते हैं, ये किसको पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। वो थोड़ी बताते हिस्ट्री में कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय तक राज्य चला, एक तो पाया कैसे, फिर कितना समय उनका राज्य चला, फिर त्रेता में राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ भी नहीं जानते। माना इतिहास को, वो सतयुग त्रेता के इतिहास को नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आया है, किस लिए आया है, हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का भी रास्ता बताते हैं, पाप है फिर टीचर बन के पढ़ाते हैं, फिर सदगति का भी रास्ता बताते हैं गुरु के रूप में। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। ये है तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज आती है, ये प्रकृति का नियम है। पहले सतो फिर वो रजो फिर तमो जरूर बनती है, ये प्रकृति का नियम है। ये जो सृष्टि है उनकी भी तो आयु है, नई सो फिर पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है, ये तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, ये भगवान ही कह सकते हैं, सतयुग में भारत ही था, क्योंकि उनको ही सतयुग की हिस्ट्री का पता है, और तो किसको पता ही नहीं है। सतयुग में भारत ही था, उसमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। केवल देवी देवता ही नहीं, उनको बाबा कहते गॉड गॉडेस, परंतु स्मॉल जीओडी, और कैपिटल जीओडी तो एक परमात्मा, वो एक है, उसके पीछे एस नहीं लगता। तो बाबा कहते गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ, गॉड गॉडेस का राज्य था फिर क्या हुआ, उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो तमो में आए, इतने इतने जन्म लिए। तो सारा इतिहास बाबा बताते हैं। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज कितनी थी, 125 से 150 साल एक एक व्यक्ति की आयु। अभी भी कोई जीते हाँ 125 साल तक तो जीते, ये कई दो चार ऐसे होंगे तो बताते सबसे बूढ़ा व्यक्ति ने शरीर छोड़ा 125 साल, लेकिन 150 साल मनुष्य की सबसे हाईएस्ट आयु होगी, वो भी सतयुग के देवताओं की। कलयुग में अभी तक कोई 150 साल नहीं जिया, 125 तक तो है। तो आयु एवरेज 125 से 150 साल होती है, उसको अमर लोक कहा जाता है। अकाल मृत्यु कभी भी होता नहीं, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, अमर रहते हैं का मतलब आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी है विशेष वर्ल्ड, वो निर्विकारी दुनिया ये विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, इतिहास बताया बाबा ने। अभी फिर बाबा बाबा पिता कैसे है, तुम शिव बाबा की संतान है। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, ये दादा से नहीं, हाँ ये तो दादा है और वो दादा है, हाँ उसने बताया ना दादा दादा, हाँ वो दादा है, ग्रैंडफादर है। वर्षा तो दादे से मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी पर सब पुत्रों का हक लगता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, एडम और ईव, आदम और बीबी, वो है निराकार गॉड फादर, और ये प्रजापिता ब्रह्मा हो गया साकार फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डैडी की मिल्कियत मिलेगी तो कैसे मिलेगी? ग्रैंडफादर की मिल्कियत अगर मिलती है तो कैसे मिलती है? बाप द्वारा ही मिलती है। हाँ, तो बाप के पास है तो बाप को ही फिर बच्चों को देना पड़ता है, भले वो ग्रैंडफादर की मिल्कियत हो। तो ग्रैंडफादर की मिल्कियत मिलती है बाप द्वारा, तो शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। शिव बाबा का वर्षा है, स्वर्ग का वर्षा, लेकिन मिलता कैसे है? ब्रह्मा दादा द्वारा। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक ने कहा, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता है। ये किसने बताया कि मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता? भगवान ने बताया। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा तो बहुत है ग्रंथ में, तो कितनी महिमा लिखी है, तो महिमा तो शिव बाबा की बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी, अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। अब इसका बाबा ने कैसे गुरु ग्रंथ साहब से भी लिया है, गुरु नानक भी कहते हैं जप साहिब को तो सुख मिले, तो जप साहिब को माना शिव बाबा को याद करो तो सुख मिले, यानी स्वर्ग का वर्षा मिले। तो गुरु नानक भी कहते हैं जप साहिब को तो सुख मिले, क्योंकि इनके दो मुख्य जो शास्त्र है जप साहिब और सुखमणि, तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी, ये कलयुग में महाभारत लड़ाई पूरी होगी, तो पूरी होने के बाद क्या होगा? लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बात है, कैसे एक ही धर्म होगा? ये बड़ी लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद एक ही धर्म होगा, तो ये हाँ बाबा कहते समझने की बात है। भगवान वाच, पति पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है, वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए, ये नियम है, कानून है, भगवान हमारा पिता और वो इतना ऊंचा और हम उनके बच्चे और दुख में हो, ये कैसे होगा? हाँ, उसका कितना ऊंचे से ऊंचा दाता है, वो तो इतना देता है जो छप्पड़ पार के देता है, और फिर मनुष्य दुखी कंगाल पतित, तो बाबा कहते ऐसे कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं तो भगवान वाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है, वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ गई है, अभी थोड़ी सो जो रही हुई है वो भी आ रही है, अब तो सब आत्माएं यहाँ आ रही है। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम और नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो उसमें क्या क्या होता है, पुराना घर बहुत हो गया, कई तो वो पुराने को तो छोड़ के ही चले जाते हैं, फिर अभी पुराना है तो फिर जब वापस आते हैं तो उस घर में क्या होता है, तो पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प बिच्छू सारे कीड़ा कीड़े मकोड़े जीव जंतु सारे उसमें घर कर लेते हैं। मनुष्य तो निकल गए लेकिन बाकी तो सब उसमें घर कर लेते हैं, तो उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। अब ये दुनिया भी ऐसी है, कैसी ये दुनिया इतनी पुरानी हो गई है, तो मनुष्य जैसे चूहे माफी काटते हैं सर्प माफी काटते हैं दुख देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो राम राज्य हो, परंतु ये तो बापू गांधी जी के वश की बात नहीं है, ये कौन कर सकता है, परंतु ये तो केवल एक बाप का ही काम है। राम राज्य स्थापन करना स्वर्ग स्थापन करना ये केवल एक बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, पहले पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनकी सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे, कैसे बनते लक्ष्मी नारायण, जरूर इस समय उनकी आत्माओं ने ये कर्म किया होगा, तो इस समय ऐसा कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वो कर्म विकर्म ही बन जाते हैं। क्यों विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान है, आत्मा का तो ज्ञान है ही नहीं, तो जो भी देह अभिमान में कर्म होंगे वो तो विकर्म ही होंगे। और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, गीता में भी है ये बात, ये वाक्य है, भगवान ने अर्जुन को कहा मैं आकर के कर्म कर्म विकर्म की गति समझाता हूँ, तो बाबा कहते हैं ये गीता में भी शब्द है परंतु नाम बदल दिया है। अब ये श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा कि मैं आकर के कर्म कर कर्म विकर्म की गति बताता हूँ, उनको तो पता ही नहीं है श्री कृष्ण की आत्मा को, वो तो श्रेष्ठ कर्मों का फल पाते हैं, ये तो भगवान ही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं गीता में भी है परंतु नाम बदल दिया है, कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये है एक कज भूल, बहुत बड़ी भूल है जिसके कारण ये सारा संसार में सब ये भूल हो गई है। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में, अभी शिव जयंती मनाई ना, रोज रोज शिव जयंती कहीं ना कहीं मनाते हैं, कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस है चारों तरफ शिव जयंती का माहौल है, शिव बाबा का झंडा रोहण करते हैं। अब तो बाबा कहते हैं कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में, शिव है निराकार परम पिता, श्री कृष्ण तो साकार में है, तो पहले शिव जयंती होती है फिर श्री कृष्ण जयंती होती है जो भारत में ही मनाते हैं, पहले शिव जयंती कृष्ण जयंती नहीं है, तो क्या है बीच में, शिव जयंती और कृष्ण जयंती के बीच में क्या है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं, तो बाप आकर के भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, लेकिन उसके बीच में क्या है, शिव जयंती और कृष्ण जयंती के बीच में क्या है, उसके बीच में है राखी। अगस्त में राखी होती ना, पहले राखी होगी फिर जन्माष्टमी होती है, शिव जयंती तो फरवरी में होती है, फरवरी मार्च, तो इसीलिए पहले शिव जयंती फिर राखी और फिर कृष्ण जयंती। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, पर उसके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए, श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए तो पवित्रता चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, तभी तो श्री कृष्ण आएगा ना। फिर लड़ाई लगती है शिव जयंती के बाद, फिर लड़ाई लगती है, तब सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर के नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, है ना। कैसे विचित्र ये पढ़ाई है, ये इस दुनिया के लिए पढ़ाई नहीं है, ये अमर लोक के लिए हमारी पढ़ाई है। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज होगा ही नहीं, तो दूसरे जन्म के लिए पढ़ते हो तो उसी जन्म में पढ़ते, शरीर छूटा तो पढ़ाई भी पूरी छूटी, पर यहाँ तो हम पढ़ाई करते हैं नई दुनिया के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए, ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए क्या करो, मृत्यु लोक का अंत है इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, क्योंकि विनाश हो जाएगा फिर थोड़ी पढ़ सकेंगे, फिर जितना पढ़ा उसी अनुसार ही पद मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। तो वो शिव बाबा बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी है, बाप टीचर सदगुरु है। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवानो वाच है ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, हम सब ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो, ये बहाना नहीं दे सकते हमारे नजदीक में सेंटर नहीं है, अभी तो विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है, कहाँ भी रहो वहाँ पढ़ सकते हो, ऑनलाइन तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है, कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है, उस समय बाबा भेजते थे लंदन में, जयंती बहन की लौकिक माँ थी रजनी बहन, वो लंदन में रहती थी तो बाबा उनको भेजते थे, यहाँ से पोस्ट जाती थी, भले लेट पहुँचती होगी लेकिन जाती थी, और भी कई थे जिनको यहाँ से मुरली जाती थी। तो कहाँ भी रहो पढ़ते रहो, मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे मुझे याद करो इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी, आत्मा 100% प्योर बनती है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं, कुंभ मेले पर देखो कितने लाखों जाते हैं। तो यहाँ तो जन्म जन्मांतर, ये तो कुंभ मेले जन्म जन्मांतर से चला आता है। अभी कल भी कोई नासिक से आए थे तो बता रहे थे 2027 में नासिक में कुंभ मेला है, वो भी 12 साल के बाद आता है नासिक, तो वहाँ भी कुंभ मेला है अगले साल। ये तो जन्म जन्मांतर से चला आता है, कितने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। अभी हमारी चढ़ती कला है तो हम सुख धाम में जाएंगे, फिर उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भवका जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया, अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है, मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं मूंझते रहते कैसे जनसंख्या कम हो भारत में, और हम लिखते हैं ये तो गॉड फादर का ही काम है, परिवार नियोजन करना ये भगवान का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य ही जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। भगवान की फैमिली प्लानिंग क्या है? या केवल 9-10 लाख ही रहेंगे, बाकी सब आत्माएं घर चली जाएगी। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश, ये है भगवान की फैमिली प्लानिंग। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जो फैमिली प्लानिंग करने वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि विकार में भल जाओ परंतु बच्चा न हो। विकारी भले बनो लेकिन बच्चा न हो, उसके लिए वो कृत्रिम उपाय बताते हैं। अब ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा। ये प्लानिंग तो बेहद के बाप के हाथ में है। जनसंख्या को कम करना, ये प्लानिंग तो केवल बाप के हाथ में है। उस समय बहुत ज्यादा हुआ था, इंदिरा गांधी के समय पर बहुत हुआ था। तो बाबा कहते हैं ये प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ, हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी ये है संगम, जबकि क्या होता है संगम पर, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, ये भी तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण सतयुग में विश्व के मालिक थे, ये तुम ही जानते हो। ये माला किसकी बनी हुई है? उनकी बनी हुई है ना। ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, उन्हों की ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है ना, सेवा करके गए हैं तो उन्हों की याद रहती है। तो बाप समझाते हैं ये सतयुग में पवित्र थे ना, संगम पर उन्होंने सेवा की, तो फिर सतयुग में वो पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो सतयुग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, ये सतयुग में नहीं पुकारेंगे। सुख में तो कोई भी बाप का सिमरण नहीं करता, सुख में सिमरण होता ही नहीं है, तो इसीलिए बाप का सिमरण नहीं करता। दुख में सब सिमरण करते हैं, बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल ब्लिसफुल, वही आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं कि आकर के हमको स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, अभी सुख है नहीं, ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं ना, तो बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तो तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। अभी कैसे वहां मकान बनते हैं? सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। अब वो सोने की ईंटें बनती कैसे है? مشین سے سونے کی اینٹیں نکلتی رہتی ہے. وہ یہاں تو بٹھے ہوتے نا مٹی کا, وہ بناتے ہیں پھر بٹھے میں ڈالتے ہیں, وہاں تو مشینیں ہوں گی, اور سونا ڈالو اور اس کی اینٹیں بن کے وہ سانچے میں اینٹیں بن کر کے تیار ہو گیا, کیسے ہوگا وہاں, اور وہ بھی سونا. پھر سونے کی اینٹیں کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ان اینٹوں پر, پھر اس میں ہیرے جواہراتوں کی جڑت کرتے ہیں. اب سونے کی اینٹ ہوگی تو اس سونے کی اینٹ پر ہیرے جواہرات کی جڑت کرتے ہیں. دواپور میں بھی کتنے ہیرے تھے جو لوٹ کر لے گئے, ابھی تو کچھ سونا دکھائی ہی نہیں پڑتا. وہاں پر کرناٹک میں کولار گولڈ فیلڈ ہے, کولار گولڈ فیلڈ, تو وہاں تو ساری کھانی خالی ہو گئی, ابھی وہ میوزیم بن گیا ہے, وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو تھوڑا سا سونا اس میں سے بچا کے رکھا ہے, وہ میوزیم میں وہ دکھاتے ہیں نیچے نیچے, ایک دم لے جاتے ایک دم نیچے جہاں سے سونا نکلتا تھا, ابھی تو نہیں ہے کچھ بھی سونا. تو وہ تھوڑا سا اس کو رکھا ہے نشانی کہ یہاں سے ایسے سونا نکالتے تھے. تو بابا کہتے ہیں ابھی تو کچھ سونا دکھائی نہیں پڑتا ہے. یہ بھی ڈراما میں نوند ہے کہ اس سمے سونا جیسے غائب بھی ہو گیا ہے. یہ بھی ڈراما میں نوند ہے. باپ کہتے ہیں میں ہر 5000 ورش بعد آتا ہوں پرانی دنیا کے وناش کے لیے. یہ ایٹومک بوم سادی بنے ہیں, یہ ہے سائنس. ایٹومک بومس بنانا یہ ہے سائنس. بدھی سے ایسی ایسی چیزیں نکالی ہے جس سے اپنے ہی کل کا وناش کریں گے. باپ بھگوان ہو آج, ایسی ایسی چیزیں سائنس نے نکالی ہے جس سے اپنے ہی کل کا وناش کریں گے. یہ کوئی رکھنے کے لیے تھوڑی بناتے ہیں, یہ ریہرسل ہوتی رہتی ہے. جب تک راجدھانی ستھاپن نہیں ہوئی ہے تب تک لڑائی نہیں لگ سکتی ہے. تو بابا کہتے کیوں لڑائی نہیں لگ رہی ہے, تیاری تو سب پوری ہو چکی ہے, دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں, پھر بھی لڑائی کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ کیونکہ بچے تیار نہیں ہیں. اب بچوں کا دوش, ان کا دوش نہیں. تو بابا کہتے ہیں تب تک لڑائی نہیں لگ سکتی, تیاری تو ہو رہی ہے, پھر اس کے ساتھ کیول یہ بموں سے نہیں وناش ہوگا, پھر اس کے ساتھ نیچرل کیلمٹیز بھی ہوگی, پراکرتک آپدائیں بھی ہوگی. روز کچھ نہ کچھ سماچار آتا رہتا ہے پراکرتک آپداؤں کا, کیلمٹیز بھی ہوتی بھی ہوگی. اتنے آدمی پھر ہوں گے نہیں, ہول سیل موت ہوگا تو پھر بابا کہتے اتنے آدمی ہوں گے نہیں. اب بچوں کو اس پرانی دنیا کو بھول جانا ہے. بابا بے حد کا ویراگیہ دلاتے اس پرانی دنیا کو بھول جانا ہے. گیتا میں بھی آتا ہے نا, ارجن کو کہا ان سب کو مارو, تو ارجن نے کہا میں کیسے ماروں, تو بھگوان نے ان کو دکھائے تو سب مرے پڑے, دکھایا ساکشاتکار کرائے کہ دیکھو سب مرے پڑے, ایک دم شمشان گھاٹ دکھا دیا, یہ تمہارے ماما چاچا کاکا گرو گسائی سب مرے پڑے ہیں, ان کی موت نشچت ہے. تو اس لیے بابا کہتے ہیں, تو بابا بھی کہتے ہیں اب بچوں کو اس پرانی دنیا کو بھول جانا ہے, باقی سویٹ ہوم سورگ کی بادشاہی کو یاد کرنا ہے. جیسے نیا گھر بناتے ہیں تو پھر بدھی میں نیا گھر ہی یاد رہتا ہے نا. اب بھی نئی دنیا کی ستھاپنا ہو رہی ہے. باپ ہے سرو کا سدگتی داتا, آتمائیں سب چلی جائے گی باقی شریر یہاں ختم ہو جائیں گے. آتما پوتر بنے گی کیسے, باپ کی یاد سے. پوتر بھی ضرور بننا ہے, دیوتائیں پوتر ہے نا, انہوں کے آگے کب بیڑی تمباکو آدی نہیں رکھی جاتی ہے, مندر میں بیڑی تمباکو آدی نہیں رکھی جاتی ہے دیوتاؤں کے آگے, وہ تو ویشنو ہے. وشنو پوری کہا جاتا ہے نا, وہ ہے ہی وائس لیس ورلڈ, یہ ہے وشیس ورلڈ. اب وائس لیس ورلڈ میں جانا ہے, نرویکاری دنیا میں جانا ہے, سمے باقی تھوڑا ہے, یہ تو خود بھی سمجھتے ہیں, एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते भी हैं कि हमको कोई प्रेरणा करने वाला है। अभी कल भी कोई आया मुझे कहता है कि ट्रंप भी कहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति, सवेरे 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है, अभी पता नहीं कहाँ पड़ा होगा उसने। उसने कहा कि ट्रंप कहता है कि 3 बजे सुबह मेरी आंख खुल जाती है और कोई मुझे प्रेर रहा है कि ये और बनाओ। तो देखो पता नहीं। तो बाबा कहते हैं, बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं, जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, अपने ही कुल का विनाश करेंगे ना, इससे पता भी है, परंतु बनाने बिगर रह भी नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश ये भी ड्रामा में नोंद है, विनाश सामने खड़ा है, ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। कैसे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी? इस ज्ञान यज्ञ से। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, बनने के लिए पढ़ रहे हो, ये पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी, ये चक्र फिरता रहता है। हाँ, नई बन जाएगी, प्रलय कभी नहीं होगी। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास पुनरावृत जरूर होता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बोधी आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा। ये विनाश होगा तो जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तो तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? कौन ये सब बता रहा है तुमको? कौन पढ़ा रहा है? वो निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, वही सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो शिव बाबा जैसे आते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं, तो फिर इसलिए क्या कहते हैं, शिव जयंती होते ही फिर गीता जयंती हो जाती है, कृष्ण जयंती उस समय नहीं होती है। तो शिव जयंती सो गीता जयंती, तो इसलिए बाबा कहते हैं आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। फिर बाद में गीता जयंती, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, फिर पवित्रता की राखी बांधी, फिर बाबा कहते कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं, कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, वो ये तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है जो तुमको पढ़ा रहे हैं। किस लिए? 21 जन्मों के वर्षे के लिए पढ़ा रहे हैं, वर्षा देने लिए। विनाश तो होना ही है, इस समय के लिए ही कहा जाता है। क्या कहावत है इस समय के लिए? किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। पर सफली उसकी होगी जो करे हरि के नाम, बस उसकी सफली होगी। तो चोरी चकारी भी बहुत होगी, होता है ना, जब हवाई जहाज एरोप्लेन कहीं गिरता है ना, सब मर जाते हैं, तो उस समय इतने चोर आ जाते हैं, सब लूट के ले जाते हैं। वो कहाँ चला गया तो कैसा, क्योंकि उनके पास तो क्या नहीं होगा हवाई जहाज में, तो और वो सब लूट के ले जाते हैं। तो बहुत पहरा रखना पड़ता है ताकि उस एरिया में कोई भी इसको लूटे नहीं, क्योंकि कुछ तो सामान उनका गिरता होगा, कुछ तो बच जाता होगा। तो बाबा कहते हैं चोरी चकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे, अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंद हो जाएगी। उस समय ये बहुत कोल्ड वॉर था, 60s में रशिया और अमेरिका के बीच में होड़ थी हथियार बनाने की, और कभी भी लड़ाई छिड़ सकती थी, लेकिन बाबा ने कहा अभी नहीं छिड़ेगी, अब बच्चे तैयार ही नहीं हुए हैं तो लड़ाई कैसे लगेगी। फिर वो ठंडे बस्ते में चला गई लड़ाई, अब वो खत्म हो गई, कोल्ड वॉर था ना, लड़ाई लगी नहीं थी, लगती तो खत्म हो जाता लेकिन लगी नहीं थी। तो बाबा कहते थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंद हो जाएगी, थोड़ी अजून देरी है। अब ये तो उस समय कहा था बाबा ने, 69 से पहले ही ये बाबा बातें की थी। अभी थोड़ी देरी है अजून, तुम आपस में सब आपस में लड़ेंगे फिर छुड़ाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। अभी तो फिर भी यूनाइटेड नेशंस बीच में आ जाता है या कोई और देश सुलह करवाता है, लेकिन उसके बाद तो कोई रहेगा ही नहीं जो उनको सुलह भी करावे, इसलिए लड़ाई तो बढ़ती जाएगी। जो छुड़ाने वाला कोई रहेगा ही नहीं, रक्त की नदियों के बाद फिर दूध घी की नदियां बहेगी। इसीलिए दोनों ही ड्रामा में नूंद है, पहले रक्त की नदियां उसके बाद दूध घी की नदियां, वो भारत में होगा। विदेशों में रक्त की नदियां नहीं बहेगी, वहां तो बॉम्ब गिरा और खत्म, उसमें रक्त की नदियां नहीं बहेगी, वो जल जाएंगे ना। पर यहाँ तो सिविल वॉर होगी ना, बंदूकें चलेगी, क्या नहीं चलेगा, मार काट होगी, तो रक्त की नदियां बहेगी। सिविल वॉर में तो ऐसा ही होता है। तो बाबा कहते हैं रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेगी। इसको कहा जाता है, रक्त की नदियां बहने को क्या कहा जाता है, खूनी नाहक खेल, नाहक खून बहाना, और खूनी नाहक खेल। तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, विनाश का साक्षात्कार किया है, सिविल वॉर का भी साक्षात्कार किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। जो उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, उस समय सिविल वॉर जैसा ही वातावरण था, कितनी मार काट हुई, बहुत कुछ हुआ। तो बाबा से पूछते थे अब कि बाबा क्या यही विनाश है, क्योंकि समाचार तो मिलता था ना कितने मर गए, पूरी ट्रेन की ट्रेन एकदम सबको मार डाला जो भारत में भाग के आ रहे थे। तो इसीलिए तो फिर बाबा से पूछा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे ये तो ट्रेलर है। फिर 1945 में जो बॉम्ब गिराया अमेरिका ने रशिया पर, ये जापान पर, तब भी बाबा ने कहा ये तो ट्रेलर है। फिर भूकंप भी बहुत हुए थे, बाबा ने कहा ये सब भी ट्रेलर है। ट्रेलर दिखाते ना, पूरा फाइनल से पहले ट्रेलर दिखाते हम। तो बाबा कहते ये ट्रेलर है। तो बाबा कहते हैं तो विनाश के पहले, हाँ, तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे वर्षों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, विष्णुपुरी में चलने के लिए क्या करना होगा, स्वयं को लायक बनाना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म न हो इसका ध्यान रखना है। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। बाबा कहते फरियाद नहीं करो, हाँ बाबा ये नहीं हुआ, बाबा ये क्या हुआ, ये सब बातें बाबा को नहीं कहो, फरियाद नहीं करो, कंप्लेन मत करो, पर याद करो शिव बाबा को प्रेम से। तो फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है, क्या विशेषता है संगम युग की? अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। कौन सा प्रत्यक्ष फल? बाबा बताते हैं, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। जो बाबा वरदान देते हैं उसकी स्मृति आते ही प्राप्ति का अनुभव होता है। तो अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, वो तो गारंटी है ही है, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। अभी का है श्रेष्ठ भाग्य, क्योंकि अभी सारा ज्ञान है ना, सत्युग में तो ज्ञान भी नहीं होगा। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, क्या करें कैसे करें, ये होता नहीं है, थोड़ी थोड़ी मदद दे दो, ये है फरियाद। करते हैं क्या फरियाद बाबा को? बाबा ये क्या हो गया, कैसे करे, क्या करे, ये होता नहीं है, हाँ थोड़ी थोड़ी मदद दो बाबा। बाबा कहते ये फरियाद है। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। बस बाबा की याद में समा जाओ, मेरा बाबा कहो, हाँ मेरा बाबा, उसमें सारी फरियाद खत्म हो जाएगी। स्लोगन, योगी निरंतर योगी बनो, स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अव्यक्ति शारे, एक और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो के अंतर्गत संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो। क्या करना है? संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, हम सब एक है, एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रत्यक्षता, आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। क्या है प्रतिज्ञा? एकता और विश्वास। तो ये प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ है? चलो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनों को आज का प्रोग्राम देंगे। So we will sit in meditation now and then after that I'll announce double foreigners program. So all of you please remain seated.